मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत में जो चुनाव सुधार संशोधन विधेयक अभी पारित किया गया है, उसको आधार बनाकर आपसे कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले की जो दूसरी खबरें हैं उन पर थोड़ी एक सामान्य सी नज़र डाल लेते हैं। आपने न्यूज़ में सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि एक जो कानून बनने जा रहा था, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक है ना, इसके तहत जो लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम उम्र है, आप जानते हैं कि अभी उनकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है, लड़कों के लिए 21 वर्ष है, तो इसे लड़कों के समान ही 21 वर्ष करने का प्रावधान इसमें था। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि यह प्रावधान सब पर लागू होना था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, भी हो, कहीं का कुछ भी वो हो, सभी पर यह समान रूप से लागू हो रहा था। और आप जानते हैं कि समान नागरिक संहिता की मांग बहुत लंबे समय से की जा रही है, यहां तक कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वह भी इस बात के फेवर में है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए। खैर, संसद में इस पर बहस हुई लेकिन बात नहीं बन पाई और विपक्ष की मांग पर फिर अब इस विधेयक को बकायदे संसद की स्थायी समिति को सौंप दिया गया है। संसद की स्थायी समिति, यहां आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि खासकर यदि किसी विधेयक पर इस तरह के विरोध की स्थिति हो, जैसे विपक्ष संशोधन की मांग कर रहा है लेकिन सरकार के लिए संभव नहीं है कि वह इन संशोधनों को शामिल कर सके, या विपक्ष लगातार उसका विरोध कर रहा है, तो एक जो सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसके तहत होना यही चाहिए कि उस पर विचार करने के लिए किसी संगठन को, संस्था को सौंप दिया जाए कि भाई ठीक है, आप चलिए इस पर हमें सिफारिश कीजिए, बताइए क्या किया जाना चाहिए। तो हमारे यहां इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए स्थायी समितियां बनी हुई हैं, संसद की स्थायी समिति है, इसमें सभी दलों के सदस्य रखे जाते हैं, ऑलमोस्ट कोशिश की जाती है, वो इन पर विचार करते हैं, विशेषज्ञों को बाहर से बुलाते हैं, सब अपने अपने मत देते हैं और फिर जो उन्हें ठीक लगता है फिर वह अपनी सिफारिश संसद को प्रस्तुत कर देती है ये स्थायी समिति, और फिर स्थायी समिति की वह जो रिपोर्ट है, जो सिफारिश है, वो बकायदे संसद में रखी जाती है और उस पर फिर बहस होती है और फिर देखते हैं कि उस विधेयक के बारे में अब क्या किया जाना चाहिए। और बहुत संभव है कि हो सकता है कि जो विपक्ष ने उस समय मांगे की थी उन्हें अब इसमें शामिल कर लिया जाए, तो ये सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया है कि इसे संसद की स्थायी समिति को सौंप दिया गया है। यहां मैं एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि स्थायी समिति क्या होती है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लें, या कह लीजिए कि संसद की जो समितियां हैं, संसद में जो समितियों की व्यवस्था की गई है, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति, एस्टिमेट कमेटी, इस तरह की कई समितियां हैं, इन्हें बहुत अच्छे से आपको तैयार करना चाहिए। प्री एग्जामिनेशन में से कम पूछा ही जाता है, यहां तक कि मुख्य परीक्षा के तहत भी अपने उत्तर को आप बहुत अच्छे से लिख सकें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि समितियों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और समितियों की जब आप तैयारी करेंगे तो उनके जो नाम है उसी के आधार पर उनके बहुत से चरित्र स्पष्ट हो जाते हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे स्थायी समिति, अब स्थायी समिति क्या है, दो तरह की समितियां होती हैं, एक स्थायी समिति एक अस्थायी समिति। स्थायी समिति जो लगातार बनी रहती है, और अस्थायी समिति जो बनाई गई किसी पर्पज से, वो काम पूरा हो गया इसके बाद उसे भंग कर दिया गया, नई जरूरत पड़ी तो फिर से नई समिति बना दी गई। तो स्थायी और स्थायी समिति का जो मूल अर्थ है वो यही है, लेकिन आप इस पर अच्छी तैयारी कर लें। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं बिजनेस स्टैंडर्ड का, जो प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर है। प्लास्टिक प्रदूषण सीधे सीधे भले ही आपके सिलेबस में मेंशन न किया गया हो, लेकिन आपके सिलेबस का ये हिस्सा है। ऑनलाइन के तहत इस पर बकायदे लेक्चर भी प्रोवाइड किया गया है और इस पर एक कानून भी सरकार ने बनाया था, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016। इसमें कुछ अच्छे डेटा दिए हैं और मुझे लगता है कि ये छोटा सा ही है लेकिन अपने आप में प्लास्टिक का जो टॉपिक है उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इससे क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं, सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है, भारत की क्या स्थिति है, कैसे इसका प्रबंधन किया जाना चाहिए, इसमें मुझे एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगी वो ये कि देखिए, जो कचरों का जो प्रबंधन किया जा रहा है भारत में, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, हम ये नहीं कह सकते कि हम उससे संतुष्ट रह सकते, लेकिन आप देखिए कि असंगठित क्षेत्र कितने हमारे कचरे का निपटान करता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, क्योंकि शहरों में आपको बिनने वाले लोग मिलेंगे, कचरा बिन रहे हैं, बच्चे, महिलाएं, हालांकि इसका हम समर्थन नहीं करना चाहते क्योंकि वो बच्चे उन स्वास्थ्य पर उनका बुरा असर पड़ता है और ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा करते हैं, महिलाएं लगी रहती हैं। वो कचरा बीनते हैं और इसके बाद कबाड़ियों के यहाँ ले जा करके बेचते हैं, फिर कबाड़ी जो है ना उसे कहीं से कहीं पहुंचाते हैं। तो इस तरह से असंगठित क्षेत्र इसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है। और एडिटोरियल में ये लिखा भी गया है कि जब कचरा प्रबंधन के बारे में बातें हों, कानून बने, तो इस क्षेत्र को शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि असंगठित क्षेत्र की भी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार करके परिभाषित किया जाना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात इसमें कही गई है, तो इसे आप सब अच्छे तरीके से देख लेंगे। दोस्तों, अभी मैं लड़कियों की उम्र के बारे में बात कर रहा था, विवाह की उम्र के बारे में, तो यहां एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि कल के दूरदर्शन न्यूज में इस पर एक डिस्कशन दिखाया गया था, एक बहस दिखाई गई थी और उसमें कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए गए थे। अगर आपने यह डिस्कशन नहीं सुना हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे आप जरूर सुन लें। कल के जो न्यूज़ आती है दूरदर्शन की 8 बजे, वहां आपको इस विषय पर डिस्कशन सुनने को मिल जाएगा। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, चुनाव सुधार को लेकर। चुनाव सुधार के लिए भी अभी एक संशोधन विधेयक लाया गया था और वो संशोधन विधेयक विपक्ष के विरोध के बावजूद वो पारित कर दिया गया है। सच पूछे तो विपक्ष का जो विरोध था इस पूरे के पूरे मामले में, तो विरोध के लिए विरोध जैसा ही लग रहा था, क्योंकि इससे 3 साल पहले विपक्ष के जब इसके बारे में मीटिंग की गई थी तब बकायदे विपक्ष की यही पार्टियां इसके पक्ष में थीं। खासकर चुनाव आयोग खुद इसके बारे में सरकार से रिक्वेस्ट कर चुका है कि इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो उसी को देखते हुए बहुत लंबे अरसे के बाद सरकार इस तरह का संशोधन कानून लेकर आई है। संसद के दोनों सदनों से यह पारित हो चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और यह कानून बन जाएगा। सवाल यह है कि इस पर आप तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं कि इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, इस पर तैयारी कैसे करेंगे, यदि मैं उस पर कुछ बात कर सकूं तो शायद आपके ज्यादा काम के होंगे। पहली बात आपकी जानकारी में यह होना चाहिए कि हमारे यहां जब चुनाव सुधार की बात की जाती है तो क्यों की जाती है, यानी कि हमारे यहां जो चुनाव होते हैं उनमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या कमियां हैं। जब आप इन कमियों के बारे में पढ़ेंगे तो जो सबसे बड़ी कमी जो पकड़ में आती है, हमारे यहां समझ में आती है और इसे खुले मन से स्वीकार भी किया जाता है, वो है चुनाव में धन का उपयोग, और यहां तक कि शक्ति का उपयोग की भी, धन बल का उपयोग। धन पानी की तरह बहाया जाता है, भले ही सीमा निर्धारित कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन उसका कोई पालन नहीं होता, उसके रास्ते निकाल लिए गए हैं। पानी की तरह धन बहाया जाता है और कहीं कहीं शक्ति का भी सहारा लिया जाता है। हमारे चुनाव व्यवस्था की ये दो सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। चुनाव सुधार की बात जब की जाती है तो जब लोकतंत्र की बात होती है तो यह कहा जाता है कि आप चुनाव सुधार ले आइए, लोकतंत्र में सुधार आ जाएगा और भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा, क्योंकि चुनाव सुधार का संबंध सीधे सीधे भ्रष्टाचार से है। क्योंकि यदि पैसा पानी की तरह बहाया जाएगा चुनाव के दौरान तो ये कोई जनसेवा जैसी चीज दिखाई नहीं देती, फिर तो इन्वेस्टमेंट लगता है ना, कि चाहे वो छोटे से ही चुनाव क्यों ना हो, पंचायत के चुनाव क्यों ना हो, वो शहरी निकायों के चुनाव हो, विधानसभा या संसद के चुनाव हो, अगर उनमें पैसा लगाया जा रहा है तो मतलब इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इसको लेकर के बहुत बातें होती हैं और सरकार ने अलग अलग समय पर इसके लिए जो कदम उठाए हैं उसकी चर्चा हम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होने चाहिए। अभी जिस चुनाव सुधार की बात की गई है उसका संबंध जो पहचान पत्र है उससे आधार कार्ड के नंबर को जोड़ने का है। अब आप देखिए कि ये अभी की व्यवस्था है, अब आप इस पर कैसे तैयारी करेंगे। आपने चुनाव सुधार की आवश्यकता और किन किन सुधारों की बात की जाती है इस पर आपने तैयारी कर ली, फिर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अच्छे से तैयारी करनी है, इसलिए कि यदि आगे चल करके मेंस में कोई प्रश्न पूछा जाता है इससे संबंधित, चुनाव सुधार से संबंधित, तो उसमें इसे जरूर शामिल किया जाएगा। और मेंस में करेंट अफेयर्स का यही रोल होता है कि करेंट अफेयर्स के आधार पर आप ये जज कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है इस टॉपिक पर। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि चुनाव सुधार पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा सीधे सीधे कि चुनाव सुधार की क्यों जरूरत है, सिविल सर्विस में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन चूंकि एक विधेयक पारित हुआ है तब फिर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि चुनाव सुधार पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और उसके केंद्र में होगा अभी पारित किया गया विधेयक। ठीक है, जब अभी पारित किए गए विधेयक को हम केंद्र में रखते हैं तो अब इस पर कैसे तैयारी होनी चाहिए आपकी? पहली तैयारी यह होनी चाहिए कि इस विधेयक में क्या क्या व्यवस्था की गई है। अब जानते हैं, पहचान पत्र से सीधे इसको जोड़ दिया जाएगा आधार कार्ड के साथ। इसके बाद ठीक है, आप चार बार अपने उसमें चेंज करा सकते हैं। इस तरह की दो तीन मूलभूत व्यवस्थाएं हैं। आपको केवल मूलभूत बिंदुओं को ही ध्यान में रखना। देखिए, अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो 150-200 शब्दों में ही आपको लिखना है, और उसमें और दूसरी चीजें जुड़ी हुई होंगी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो तीन पॉइंट्स हैं, आप उन्हें याद कर लें, नोट कर लें, और इसके बाद फिर अब आप देखें कि ये जो बिंदु हैं इनके पक्ष और विपक्ष में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष ने अपनी तरफ से प्रश्न उठाए हैं, इसका विरोध किया है, और उनके जो विरोध का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है निजता का उल्लंघन। यानी कि सीधे सीधे जब आप आधार कार्ड से जोड़ देंगे तो जो डेटा है एक कैंडिडेट का वो दूसरों तक पहुंच जाएगा, चुनाव आयोग तक पहुंच गया, अब सरकार के हाथ में तो है ही, और आज आप जानते हैं कि डेटा कितना महत्वपूर्ण हो गया है। अब जब आप विरोध वाले बिंदुओं को देखेंगे तो अब आपका जो अपनी तरफ से काम बच जाता है वो ये है कि ये जो विरोध किए जा रहे हैं या जो आलोचना हो रही है इनमें कितना दम है, उसकी काट क्या आपके पास है। जैसे निजता का उल्लंघन, ठीक है, और होगा निजता का उल्लंघन, तो अब आप इसकी काट क्या ढूंढेंगे? तो क्या ये चुनाव सुधार विधेयक जो पारित हुआ है नहीं होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि निजता का उल्लंघन की जो बात कही जा रही है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है ये बताना ज्यादा जरूरी है। सीधे ये लिख देने से बात नहीं बनेगा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये क्यों नहीं है महत्वपूर्ण, यह भी आपको लिखना होगा। इसे ही हम कहते हैं समालोचनात्मक परीक्षण। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या हो गई, आपको इसके बारे इसके जो प्रावधान है, जो महत्वपूर्ण प्रावधान, वो मालूम हो। इसके पक्ष में इसके हो जाने से क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या सुधार हो जाएंगे, वो मालूम हो। इसमें कौन कौन सी आपत्तियां हैं वो मालूम हो, और उन आपत्तियों के बारे में फिर आपके अपने विचार, या फिर जब आप अखबारों में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहां भी से भी आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, इनके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं दोस्तों, 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में जो होने वाली हैं, उसके लिए 3 स्टूडेंट्स ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इनके नाम हैं गगनदीप राजपूत, ये घुड़साल गांव के हैं, जिलाधार हैं इनका मध्य प्रदेश से, प्रभात कृष्ण गौरी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, और हरे राम कुमार अरक्कोनम तमिलनाडु से। तो गगनदीप, प्रभात और हरेराम, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से और मुकेश गुप्ता जौनपुर उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।